अमित कुमार दोनों ने एक ही साथ लव स्टोरी पिक्चर में अपने जिंदगी का करियर शुरू किया। कुमार गौरव हीरो थे, अमित कुमार उस पिक्चर में गाना गाए थे। आज 25 साल के बाद उन दोनों में ज्यादा पैसा वाला कौन है, कुमार गौरव या अमित कुमार? एक्चुअली हकीकत में जो ज्यादा पैसा वाला है वो है अमित कुमार, क्योंकि एक्टिंग जो कुमार गौरव किए थे वो एक ऐसा प्रोफेशन है, इसमें आप एक बार काम करो तो आपको पैसा एक ही बार मिलता है। सिंगिंग जो अमित कुमार किए थे वो एक ऐसा प्रोफेशन था कि जिसमें आप एक बार गाना गाओ तो उस गाने पर आपको जिंदगी भर कमाई होता है। कुमार गौरव के फादर राजेंद्र कुमार ने सारा जिंदगी एक्टिंग किया था और अमित कुमार के फादर किशोर कुमार ने सारा जिंदगी गाना गाया था। आज राजेंद्र कुमार के काम पर या कुमार गौरव के काम पर उन दोनों को किसी भी किस्म का पैसा नहीं मिल रहा है, मगर अमित कुमार और किशोर कुमार के सारे गाने के ऊपर उन दोनों को आज तक पैसा मिलता आ रहा है। आज किशोर कुमार जीवित ना रहे तो उनका भी गानों का पैसा अमित कुमार को मिलता आ रहा है। देयरफॉर इन दोनों में हकीकत में जो ज्यादा पैसा वाला है, इन दोनों में जिसके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, इन दोनों में जिसको आज बिल्कुल काम करने का जरूरत नहीं है फिर भी कंटिन्यूअसली पैसा आ रहा है, वो है अमित कुमार। अमित कुमार को जिस किस्म का पैसा मिल रहा है ऐसे पैसे को कहते हैं रॉयल्टी इनकम। किशोर कुमार के गाया हुआ गाने पर भी अमित कुमार को जो पैसा मिल रहा है उस किस्म के पैसे को कहते हैं हेरिडेटरी इनकम, यानी एक बार काम करो और जिंदगी भर पैसा कमाओ। जिंदगी में हम लोग बहुत सारे किस्म के काम करते हैं, उसमें से हमको करियर की शुरुआत में ध्यान देना यह जरूरी है हमारा काम किस किस्म का है, कुमार गौरव की या राजेंद्र कुमार की किया हुआ काम के किस्म का है या अमित कुमार या किशोर कुमार के किया हुआ काम के किस्म का है। कुमार गौरव की या राजेंद्र कुमार के काम पर, अमिताभ बच्चन जी के काम पर एक ही बार काम और एक बार पैसा मिलता है। अमित कुमार, किशोर कुमार, इनके काम पर काम एक बार करो और पैसा जिंदगी भर कमाओ या बार बार कमाओ, मरते दम तक कमाओ, ऐसा पैसा है। आपको मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर मौका मिले तो इन दोनों में किस किस्म की काम आप चुनना चाहेंगे? यानी हम लोग जिंदगी में ज्यादातर लोग जो करते हैं उसको अगर क्लासिफाई करें कि लोग अपना जिंदगी बनाने के लिए, अपने जिंदगी को जीने के लिए क्या करते हैं, तो मेजरली लोग दो चीज करते हैं। पहला नौकरी करते हैं, दूसरा बिजनेस करते हैं। नौकरी करते हो का मतलब है आप दूसरे किसी के लिए काम कर रहे हैं, बिजनेस करते हो का मतलब है आप खुद के लिए काम कर रहे हैं। यानी जो भी आदमी जिंदगी शुरू करता है, ग्रेजुएशन होने के बाद नौकरी पाता है, उसका जिंदगी एक नौकरी के साथ शुरू होता है। नौकरी मिलने के बाद रोज सुबह 9 बजे 10 बजे ऑफिस पहुंच गए, ऑफिस में पहुंचने के बाद वो काम करने लगे, शाम को 6-7-8 बजे अपने काम से घर वापस आए, शादी हो गया, बच्चे हो गए और उनका जिंदगी में प्रमोशन मिलता गया, कमाई होता रहा, घर खरीद लिए, पैसा खर्चा होने लगे, पूरा जिंदगी संभालते संभालते कब 40 साल हो गया, कब 50 साल हो गया, कब 60 साल हो गया कुछ पता ही नहीं चला। एक बार जब नौकरी चला जाता है, जब रिटायरमेंट हो जाता है, उस वक्त के बाद पता चलता है कि मैंने पूरा जिंदगी जो काम किया उसके ऊपर अभी मुझे किसी भी किस्म का पैसा नहीं मिल रहा है। जिंदगी के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का, जिंदगी में सपनों को साधन करने का, जिंदगी में आपको ख्वाब पूरा करने का, जिंदगी में अपने बच्चों को, अपनी रिटायरमेंट को या सबको बराबर तरीके से प्रोवाइड करने के लिए नौकरी सोल्यूशन नहीं है। ज्यादातर नौकरी करने वालों की हालात एक मेंढक की हालात की तरह होता है। कभी भी एक एक्सपेरिमेंट करिए, एक मेंढक को एक बहुत बड़ा गर्म पानी वाला बकेट में डाल के देखिए, डालते डालते फटाक मेंढक कोड़ी मार लेगा। उसी मेंढक को लेके एक सादा पानी वाला बड़ा सा बकेट में आप डाल के देखिए, मेंढक अंदर जाएगा और धीरे धीरे सेटल हो जाएगा। एक बार सेटल हुआ मेंढक को 2-3 महीना वैसे ही छोड़ दीजिए, पूरी तरह तब तक सेटल हो जाएगा। 2-3 महीने के बाद नीचे से बकेट को धीरे 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 गर्मी बढ़ाइए। जैसे धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, गर्मी बढ़ाएंगे, पानी गर्म होता जाएगा और मेंढक को पानी के अंदर रहना तकलीफ होना शुरू हो जाएगा, नामुमकिन होना शुरू हो जाएगा। हर तरह से तकलीफें बढ़ते जाएंगे, पेन्स बढ़ते जाएंगे, टॉर्चर्स बढ़ते जाएंगे, मगर ये मेंढक कभी भी बाहर उड़ी नहीं मारेगा। पानी का गर्मी बढ़ता जाएगा, तकलीफें टॉर्चर्स बढ़ते जाएंगे और हालात बिगड़ता जाएगा, मगर मेंढक उसी के अंदर तड़पता हुआ रहता ही रहेगा, वही सारे तकलीफों को सहता जाएगा तब तक जब तक मर नहीं जाता। मेंढक पूरी तरह सारे दर्द को सहता रहेगा और मर भी जाएगा, मगर पानी से बाहर उड़ी नहीं मारेगा। एग्जैक्टली यही हालत होती है लोगों की जो नौकरी करते हैं। एक बार नौकरी में सेटल हो गए तो छोड़ नहीं पाते, क्योंकि नौकरियों में शुरू शुरू में जो कमाई होता है वो ठीक ठाक रहता है, मगर जैसा ही उम्र बढ़ता गया, शादी हो गया, बच्चे पैदा हो गए और उनके साथ खर्चा भी बढ़ता गया, कमाई मगर जिस हिसाब से खर्चा बढ़ता है उस हिसाब से कमाई नौकरी में नहीं बढ़ता है, तकलीफें बढ़ते जाते हैं, सारे महंगाई बढ़ता जाता है, खर्चा बढ़ता जाता है, तकलीफें बढ़ते जाते हैं, मगर आदमी नौकरी नहीं छोड़ पाता है और उसी के अंदर खत्म भी हो जाता है। तो जिंदगी में नौकरी करना जिंदगी के प्रॉब्लम की सोल्यूशन नहीं। नौकरी नहीं करे तो और क्या कर सकते हैं? दूसरा जो रास्ता लोगों को मिलता है करने के लिए वो होता है बिजनेस। बिजनेस करने वालों की जिंदगी नौकरी करने वालों की जिंदगी से भी बदतर रहता है, क्योंकि नौकरी में आप अगर पूरा महीना काम किया एक पगार डेफिनेटली मिलता है, मगर बिजनेस करने वालों की वो भी इनकम के गारंटी नहीं रहता है। सुबह से रात तक मेहनत करते हैं, कभी कभी एक महीना, दो महीना, छह महीना घर वापस नहीं आते, भी बच्चों के साथ नहीं रहते हैं, और इतना काम के बाद इनकम का जब कोई गारंटी नहीं रहता है, कभी कभी कंटिन्यूअसली लॉसेस रहता है और ऊपर से बहुत सारा पैसा भी फंसा हुआ है। मगर सभी बिजनेसमैन लोगों का हालत ऐसा खराब नहीं है। कुछ लोग बिजनेस में कामयाब भी होते हैं, कुछ लोग बिजनेस में बहुत सारा पैसा भी कमाते हैं। आप अगर उन लोगों को देखेंगे जो बिजनेस में सक्सेसफुल हैं, बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, उनकी जिंदगी को गौर से देखेंगे, तक बहुत करीबी से देखेंगे तो इनके पास बहुत सारा पैसा है, मगर बीवी बच्चों के लिए, खुद के लिए, फैमिली के लिए टाइम नहीं है। यानी जिन बिजनेसमैन लोगों के पास पैसा है उनके पास टाइम नहीं रहता है, और अगर बिजनेसमैन के पास टाइम है तो उसका तकलीफ है कि पैसा नहीं रहता है। टाइम है तो पैसा नहीं है, पैसा है तो टाइम नहीं है। ज्यादातर लोगों के पास ना टाइम रहता है ना पैसा रहता है। यानी बिजनेस में भी कोई भी किस्म का सेटल होना या गारंटेड इनकम ऐसा रहता नहीं है। आप अगर देखेंगे 100 में से 97% लोग ऐसे लोग हैं जहां जिनके पास ना टाइम है ना पैसा है, और सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं जिनके पास टाइम भी है और पैसा भी है। इस 3% लोगों को कहते हैं जो टॉप 3%, और जो बाकी 97% जिनके पास ना टाइम है ना पैसा है उन लोगों को कहते हैं बॉटम 97%। आज का मेरे प्रेजेंटेशन का मकसद यह है कि आपको बॉटम 97% से लेके टॉप 3% में लाना है, वहां परमानेंटली सेटल करना है। अगर ये हो गया तो हमारे आज की बातचीत कामयाब हो गया। तो आदमी अगर नौकरी भी नहीं करे और बिजनेस भी नहीं कर पाए तो करे क्या? करे क्या से भी इंपॉर्टेंट सवाल है करे क्यों? क्यों हम लोग कुछ भी करें? क्यों हम लोग नौकरी करें या क्यों हम लोग बिजनेस करें? क्या जरूरत है? यानी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी का पर्पस क्या है? क्या आपकी जिंदगी का लक्ष्य है? मरने से पहले आप क्या हासिल करना चाहते हैं? आपका गोल क्या है? आपका ड्रीम्स क्या है? कि आपका ड्रीम कार कौन सा है? आपके पास टाइम भी हो और पैसा भी हो तो आप कौन सा कार अपनाना चाहेंगे? कौन सी जगह है, कौन से इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है जहां पर आप फैमिली को लेके घूमने को जाना पसंद करेंगे 2-3 महीने की छुट्टी के लिए? कौन से किस्म के घर में रहना चाहते हैं? या आपका ड्रीम मंथली इनकम कितना है? रिटायरमेंट के बाद हर महीना आपको कितना पैसा आता रहेगा? यानी मैं आपको स्पेसिफिकली 5 सवाल पूछ रहा हूं। सवाल नंबर 1, आपका ड्रीम कार कौन सा है? नंबर 2, आपका ड्रीम इंटरनेशनल हॉलिडे डेस्टिनेशन कौन सा है? नंबर 3, आपका ड्रीम मंथली इनकम क्या है? नंबर 4, आपका ड्रीम मंथली रिटायरमेंट पेंशन कितना है? एंड लास्ट एंड फाइनल में पूछना चाहता हूं, आपका ड्रीम होम कौन से किस्म का है? वो किधर है? या कितना बड़ा सपनों के महल में आप रहना चाहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं यही सच्चाई है कि आपके पास ये सब इसलिए नहीं है क्योंकि आप ये सब चाहते नहीं है। यानी मैं आपको यह कहना चाहता हूं, साबित करना चाहता हूं कि आप जो चाहेंगे, जो फैसला करेंगे कि मुझे जिंदगी में ये चाहिए, वो सबके सब आपको मिल जाएगा। कहते हैं फाइंड पर्पस द मींस विल फॉलो। आप अगर चाहेंगे, आप अगर बता देंगे कि मुझे ये चाहिए तो रास्ता अपने आप बन जाएगा। ज्यादातर लोग जिंदगी में अपने ख्वाबों को सच नहीं कर पाते हैं इसलिए क्योंकि उनके पास ख्वाब ही नहीं रहते। अगर आपके पास ख्वाब हो तो सब कुछ मुमकिन है। इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है जापान। 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिस देश को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था वो था जापान। आधा पॉपुलेशन जापान का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मारा गया, बाकी जो आधे बचे थे दे वर फिजिकली हैंडीकैप्ड, जिंदगी में कभी भी इनको काम नहीं कर सकते थे, ऐसा हालात था। इस देश के 2 मेजर सिटीज हिरोशिमा और नागासाकी न्यूक्लियर ब्लास्ट में ध्वस्त हो गए, पूरी तरह डूब गए, बर्बाद हो गए। काम करने के लायक नौजवान नाम का कोई बचा ही नहीं। सारे दूसरे देश के लोग जापान को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देख के बोल रहे थे कि जापान खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, डूब गया, 250 साल तक खड़ा नहीं हो सकता। मगर जापानीज लोग ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन लोगों का कुछ ख्वाब थे, वो कुछ तय कर चुके थे, वो चाहते थे कि वो दुनिया में नंबर वन बन जाए। 1950 में जो बाकी कुछ जापानीज लोग थे सबके सब एग्जिट हुए 1950 में और एक नया चैलेंज लिया कि अगले 10 साल में कुछ भी हो जाए वो लोग जापान को टेक्सटाइल प्रोडक्शन में यानी कपड़ा बनाने में दुनिया में नंबर वन बन के दिखाएंगे। और 10 ही साल के अंदर वो लोगों ने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया। 1960 तक जापान दुनिया के सारे देशों में टेक्सटाइल प्रोडक्शन में नंबर वन बन गया था। 1960 को जापानीज लोगों ने नया चुनौती लिया कि अगले 10 साल में हम लोग 1970 तक आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन में दुनिया में नंबर वन बनके दिखाएंगे। आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन में दुनिया में नंबर वन बनने के लिए आपके कंट्री में आयरन ओर होना चाहिए, स्टील प्लांट होना चाहिए, कोल होना चाहिए, मैन पावर होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1960 तक जापानीज लोगों के पास इनमें से कुछ भी नहीं था। यानी हजारों माइल से इंडिया जैसे देश से आयरन ओर को इंपोर्ट करो, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री से कोल को इंपोर्ट करो, यूरोप से वो आयरन स्टील प्लांट्स को इंपोर्ट करो, वो सबके सबको इलेक्ट्रिसिटी बनाओ और स्टील मैन्युफैक्चर करो, सस्ते भाव में बेचो, तब जाके शायद हो सकता है कि टॉप 10 में आपका नाम हो। यानी आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन में नंबर वन बनना जापानीज के लिए एब्सोल्यूटली नामुमकिन था। मगर 1970 तक आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन में दुनिया में नंबर वन बन के दिखा। 1970 को ये लोगों ने कहा कि अगले 10 साल में हम लोग ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में दुनिया में नंबर वन बनके दिखाएंगे। 1980 तक जापानीज लोग ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में भी वर्ल्ड का नंबर वन बन गए। 1980 में ये लोगों ने कहा अगले 10 साल में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स में दुनिया में नंबर वन बनके दिखाएंगे। बाय 1990 दे वर। आज अगर देखेंगे तो दुनिया के जो टॉप 10 बैंक है उसमें से 7 जापानीज से, टॉप 10 कॉरपोरेशन जो है उसमें से 7 जापानीज से, इंडिया में जो कार हम चलाते हैं उसमें से 90% जापानीज है। मारुति, होंडा सिटी, मित्सुबिशी, निसान, टोयोटा, कोई भी कार देखिए ये सब जापानीज मॉडल्स है। 99% बाइक्स जो हम लोग इंडिया में चलाते हैं वो सब जापानीज है। यामाहा, हीरो होंडा, कावासाकी, बजाज, इन सुजुकी, काइनेटिक होंडा, ये सब के सब बाइक्स वो सब जापानीज है। रिस्ट वॉच अभी जो पहने हैं वो जापानीज है। कंप्यूटर्स, चिप्स, टीवी, म्यूजिक सिस्टम्स, एलसीडी प्रोजेक्टर्स, जो भी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड चीज आज आप आपके घर में, आपके आसपास में जहां कहीं देखते हैं वो सब के सब जापानीज है। हर चीज जिस जिस चीज में जापानीज लोगों ने कदम रखा वो सब में वो नंबर वन बन गए और सारा दुनिया देखता ही रह गया। आज इंडिया का पॉपुलेशन 110 करोड़ और जापान का पॉपुलेशन सिर्फ 12 करोड़। वो 12 करोड़ लोग दुनिया में हर चीज में नंबर वन और हम लोग 110 करोड़ होने के बावजूद किसी भी चीज में नंबर वन नहीं है। वो क्यों, किस लिए? क्योंकि जापानीज लोगों ने हमेशा चाहा कि वो नंबर वन बने, हमने वही शायद नहीं चाहा। तो आज हमारा वक्त आ गया दोस्तों, ये कैसेट सुनते सुनते मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं कि चाहने का वक्त आ गया, कुछ सोचने का वक्त आ गया, कुछ ड्रीम करने का वक्त आ गया। जिसके पास गोल है उसके पास सब कुछ मुमकिन होता है, हमारे पास शायद उसी चीज की कमी है। तो मैं आपको कहता हूं वो 5 चीज को एक बार वापस याद दिलाइए। आपका ड्रीम कार कौन सा है? आपका ड्रीम इंटरनेशनल हॉलीडे डेस्टिनेशन कौन सा है? आपका ड्रीम हाउस कौन सा है? आपका ड्रीम मंथली इनकम कितना है? आपका ड्रीम मंथली पेंशन कितना है? ये 500 अगर आपने सोच लिया तो मेरा वादा है ये कैसेट खत्म होने से पहले 500 को हासिल करने का रास्ता आपको मिल जाएगा। हम लोग जिंदगी भर जिस किस्म के काम करते हैं उसमें एक बार काम और एक बार पैसा रहता है। यानी हम लोगों को जिंदगी में ऐसे काम चुनने से शायद सारे जिंदगी के सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और सारे सपने सच हो जाएंगे जिसमें एक बार काम हो और बार बार पैसा हो। ऐसे काम में इस किस्म की इनकम को कहते हैं रेसिडुअल इनकम या रॉयल्टी इनकम या हेरिडिटरी इनकम। रेसिडुअल इनकम, रॉयल्टी इनकम या हेरिडिटरी इनकम हर किस्म के काम में नहीं मिलता है, हर प्रोफेशन में नहीं मिलता है, हर नौकरी में नहीं मिलता है। बहुत कम कुछ ऐसे जगह है जहां पर यह मिलता है। खास करके ये सिर्फ 4 किस्म के प्रोफेशन पर, 4 रकम के काम पर इस किस्म के पैसा मिलता है। यानी आप अगर इनमें से ये 4 में से किसी एक किस्म के काम कर पाए तो आपको जिंदगी भर आपके पीछे पैसा पड़ा रहेगा, यानी एक बार काम पर जिंदगी भर पैसा मिलता रहेगा। इनमें से पहला है सिंगर्स यानी गायक। किशोर कुमार है, अमित कुमार है, कुमार सानू हैं, लता मंगेशकर, आशा भोसले, ऐसे जो गायक होते हैं ये लोग जब जब गाना गाते हैं इनका कैसेट जिंदगी भर बिकते हैं और जब जब इनका कैसेट सीडी बिकते हैं उनको उसके ऊपर पैसा मिलता रहता है, यानी सिंगर्स को रेसिडुअल इनकम मिलता है। यानी आप और मैं अगर रेसिडुअल इनकम पाना चाहेंगे तो सबसे पहले हमको सिंगर्स बनना पड़ेगा। अगर हम सिंगर नहीं बन सकते तो दूसरा रास्ता है ऑथर्स बनना, यानी लेखक बनना, जो कि सिडनी शेल्डन है या जिग जिगलर है या टॉम पीटर्स है या टॉम हॉपकिंस है, ऐसे जो बड़े बड़े लेखक होते हैं इरविंग वैलेस वगैरह, इनके किताबों पर भी जब इनके किताबें बिकते हैं तब तब इनको रेसिडुअल इनकम, रॉयल्टी इनकम, हेरिडिटरी इनकम मिलता रहता है। यानी अगर गाना नहीं गा सकते तो हमको लेखक बनना पड़ेगा और हमारा किताब अगर सक्सेसफुल हुआ और वो अगर जिंदगी भर बिका तो हमको पैसा मिलेगा। जो तीसरा रास्ता है वो है साइंटिस्ट बनने का, यानी कोई एक नए किस्म का साइंटिफिक इनोवेशन करने का या मेडिसिन का खोज करने का जिससे HIV वायरस का, मतलब जिन जो लोगों को वो बीमारी है वो ट्रीटमेंट पा सकते हैं। ऐसे अगर खास करके जबरदस्त इनोवेशन करें या कोई मेडिसिन खोज करें तो भी हम लोगों को ऐसा रेसिडुअल कम रॉयल्टी हेरिडिटरी इनकम मिल सकता है। यानी जो तीन रास्ता हमारे पास है, पहला है सिंगर बनने का, दूसरा है लेखक या ऑथर बनने का, तीसरा है साइंटिस्ट बनने का। अगर ये तीनों हम लोग आज की तारीख में नहीं बन सकते हैं और हम लोगों को जिंदगी भर ये रेसिडुअल हेरिडिटरी एंड रॉयल्टी इनकम चाहिए तो चौथा रास्ता जो है उसे कहते हैं MDRT एजेंसी। MDRT एजेंसी का फुल फॉर्म है मिलियन डॉलर राउंड टेबल एजेंसी। मिलियन डॉलर राउंड टेबल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो USA में है और USA में जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज है, पूरे वर्ल्ड ओवर की इंश्योरेंस कंपनीज, ये सब अपने आप को MDRT के साथ रजिस्टर करते हैं। यानी इंडिया का या दुनिया का कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट अगर मिलियन डॉलर यानी 10 लाख डॉलर यानी 5 करोड़ रुपए का सम एश्योर्ड से ज्यादा बिजनेस करता है तो उस आदमी को MDRT एजेंट कहते हैं। तो आप जब MDRT एजेंट बनते हैं आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। नंबर वन, आपको पहला साल से ही करीबन 7.5 लाख रुपए का इनकम होता है, यानी पहला महीने से ही आपको 60,000 प्लस इनकम आना शुरू हो सकता है। दूसरा, MDRT एजेंसी का खास बात ऐसा है कि आपको रिन्यूअल इनकम मिलता है, यानी हर दूसरे साल से आपको 25, 30, 35, 40 साल तक आपका किया हुआ काम पर जिंदगी भर पैसा मिलता रहेगा हर साल। तीसरा खास बात जो है ये है हेरिडिटरी इनकम। MDRT एजेंट बनते हैं तो आप अगर 5 साल के बाद ना भी रहे तो आपके काम पर आपके बीवी बच्चों को जिंदगी भर बिना काम किए पैसा घर पर मिलता रहेगा। चौथी बात यह है कि MDRT एजेंट बनते बनते आपको हर साल US जाने का मौका मिलेगा, यानी आप जो कोई इंटरनेशनल हॉलीडे डेस्टिनेशन पर बीवी बच्चों को लेके जाना चाहते हैं वहां पर लेके जा सकते हैं। पांचवा खास बात, आपको इसमें इंटरेस्ट फ्री एडवांस मिलता है जिससे आप अपना ड्रीम कार और ड्रीम हाउस अपना सकते हैं, यानी बिना ब्याज के, बिना इंटरेस्ट के आप किसी भी ड्रीम कार को, आप मर्सिडीज चाहिए, होंडा सिटी चाहिए, मारुति चाहिए, वो खरीद सकते हैं। इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। और कोई भी किस्म का घर, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, कितना भी बढ़िया मकान आपके सपनों का मकान हो वो मकान आप बना सकते हैं और विदाउट इंटरेस्ट जिंदगी भर आप उसको इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं विदाउट इंटरेस्ट। यानी आपका ड्रीम कार, ड्रीम हाउस, ड्रीम मंथली इनकम, ड्रीम पेंशन और ड्रीम इंटरनेशनल हॉलीडे, ये पांचों चीज एक जगह पर, ये पांचों सपने एक जगह पर साकार हो रहा है, वो है LIC का MDRT एजेंसी। आपने सुना होगा LIC एजेंसी, अब मैं जो कह रहा हूं वो है MDRT एजेंसी। अब इन दोनों में क्या फर्क है? वही फर्क है जो एक हवलदार और DSP में होता है पुलिस में, वही फर्क है जो नेवी में एक सेलर में और एक कैप्टन में होता है, वही फर्क है जो एक आर्मी का जवान में और आर्मी का मेजर में जो फर्क होता है, वही फर्क है एक LIC एजेंट में और MDRT एजेंट में। MDRT एजेंट मिनिमम 7.5 लाख प्लस इनकम करता है, LIC एजेंट 2, 5, 10 हजार करता है। MDRT एजेंट गारंटीड US जाने का लाइसेंस हासिल करता है, LIC एजेंट अपने ब्रांड से बाहर जाने का ऐसा कोई गारंटी होता नहीं। अब सवाल यह उठता है कि आप MDRT एजेंट कैसे बन सकते हैं या ये एजेंसी कैसे पा सकते हैं। इस चीज को पाने के लिए, MDRT एजेंट बनने के लिए आपको जो पहला कदम उठाना पड़ेगा वो ये है कि इस कैसेट के कवर पर जिनका नाम लिखा है उस आदमी को उस टेलीफोन नंबर पर फोन करना पड़ेगा और उनके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करना पड़ेगा। जिनका नाम वहां पर कैसेट पे लिखा है वो LIC ऑफ इंडिया में एक डेवलपमेंट ऑफिसर है, उनके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करने पर वो आपको मार्गदर्शन करेंगे, वो आपको बताएंगे कि किस तरह आप MDRT एजेंसी का फॉर्मेलिटी पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले आपको MDRT एजेंसी पाने के लिए IRDA एग्जाम पास करना पड़ेगा, उसके बाद LIC एजेंसी वाला फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद डेली मिनिमम 5 नए लोगों के साथ मिलकर बात करते करते 555 फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, जिसका मतलब है 5 अपॉइंटमेंट, 5 मीटिंग, 5 फॉलोअप डेली करके लोगों को इंश्योरेंस के बारे में समझा के, उनको पटा के, उनका पॉलिसी ला के हर महीना मिनिमम आप 1 करोड़ रुपए तक का बिजनेस लाके आप MDRT एजेंट बन सकते हैं। आपके जो डेवलपमेंट ऑफिसर है, जिनका नाम इस कार्ड के ऊपर लिखा है, इस कैसेट के ऊपर लिखा है, वो इंडिया में जो 20,000 डेवलपमेंट ऑफिसर है उनमें से बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास ये MDRT एजेंसी देने का लाइसेंस है। अब यही एक डेवलपमेंट ऑफिसर है जिनके पास जाने पर आपको MDRT एजेंसी का लाइसेंस मिलेगा, यानी यही एक डेवलपमेंट ऑफिसर है जो आपको MDRT के लेवल तक पहुंचा सकते हैं। तो सिर्फ इनको ही जाके मिलिए, और ये जो कहते हैं वो फॉर्मूला के हिसाब से, वो जैसा इंस्ट्रक्शन देते हैं वैसा आप काम करते जाएंगे तो आपका MDRT एजेंट बनने का सपना पूरा होगा। तो आप इस वक्त तुरंत फोन उठाइए और ये डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करिए, और वो जैसा आपको मार्गदर्शन करते हैं, जो गाइडेंस देते हैं, जो डायरेक्शन